ओम शांति, ओम शांति। हम आज का ये मॉर्निंग सेशन शुरू करने जा रहे हैं, तो आप सब टाइमली इस सेशन में पहुंचेंगे तो आप सबको बेनिफिट मिलेगा। अभी हम 3 मिनट्स के लिए उस परमपिता परमात्मा की याद में बैठेंगे जिसका परिचय आज आप सबको सवेरे मिला, तो क्यों ना हम उस ईश्वर को याद करें, क्यों ना हम उसके पास चलें। सब तैयार हैं? तैयार हैं? ओके, तो 3 मिनट हम चलते हैं अपने उस प्यारे पिता के पास जिसने हमें आज की इतनी सुंदर सुबह दी, इतना सुंदर हमें जीवन दिया और हमें कितना वेल बनाया है। ओम शांति, ओम शांति। मैं आज के इस सेशन के जो हमारे मुख्य वक्ता हैं, जो हमें इनलाइटन करेंगे, विल टू बी वेल, द पावर ऑफ हीलिंग, हीलिंग द पावर ऑफ माइंड, उसके लिए मैं आज के हमारे वक्ताओं को इनवाइट करती हूँ। आदरणीय भ्राता सूर्य भाई जी, सीनियर राजू की ब्रदर ऑफ ज्ञान सरोवर, आप मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। सिस्टर तुलिका सेठ केम फ्रॉम एम्स दिल्ली, शी इज अ सीनियर प्रोफेसर ऑफ हेमेटोलॉजी, मैं आपका भी स्टेज पे वेलकम करती हूँ। डॉक्टर प्रोफेसर तपेश सिन्हा जी फ्रॉम DRDO, मैं आपका भी स्टेज पे वेलकम करती हूँ, आप भी आकर मंच पर अपना स्थान लेंगे। डॉक्टर तपेश सिन्हा जी प्लीज। एंड सिस्टर BK ईशु, शी इज द फैकल्टी एंड कोऑर्डिनेटर ऑफ ORC स्पार्क विंग, मैं आपका भी स्टेज पे वेलकम करती हूँ, आकर अपना स्थान लेंगे। सभी भाई बहने जो पीछे बैठे हैं वो आगे आ जाएं। आप सबके लिए आगे बहुत सीट्स अवेलेबल हैं, तो आप लोग आगे आ सकते हैं, आप लोग आगे आकर अपनी सीट्स ले लें। आज का हमारा विषय है विल टू बी वेल, द हीलिंग पावर ऑफ माइंड। अब विल के कितने मीनिंग हो सकते हैं? विल टू बी वेल, क्या हम सबकी इच्छा है वेल होने की? सबकी इच्छा है वेल होने की, इसका मतलब कुछ इलनेस है तभी हम वेल होना चाहते हैं। ओके, एक मीनिंग तो ये हो गया। एक होता है विल, विल माना हम किसको कहते हैं? वसीयत को। हम कहते हैं ना, अपना सब कुछ विल कर दो, हम ठीक रहेंगे, अपनी वसीयत दे दो। तो क्या सबको पता है हमारे पास क्या वसीयत है? हमारे पास भी कुछ विल है, मालूम है सबको? किसी को आइडिया है इस बारे में? नहीं, किसी को अपनी वसीयत नहीं पता कि हमारे पास क्या क्या है? नहीं मालूम है? अच्छा, ठीक है। क्योंकि वेल होने के लिए मुझे क्या चाहिए? आप यहां 2 दिन से सेशन सुन रहे हैं, तो आपको कुछ मिला, खजाना मिला, कुछ ट्रेजर, या वो अभी भी लॉक्ड है? लॉक्ड है? ओके, हाँ, किसी किसी को वो ट्रेजर्स मिले हैं, तो वो ट्रेजर्स भी आपको वेल बनने में हेल्प करेंगे। और इसको हम एक क्वेश्चन मार्क भी ले सकते हैं, विल टू बी वेल, क्या मैं अच्छा हो सकता हूँ? हो सकेंगे? सबको ये विश्वास है, फेथ है, तो जहां पर फेथ होगा वहां क्या होगा? अच्छे तो बन ही जाएंगे। तो फेथ की शुरुआत कहाँ से है? फेथ आता कहां से है? कहां से आया फेथ? मैं आप सबसे ही बात कर रही हूं, आप एक दूसरे को देख रहे हैं। फेथ कहां से आया? अंदर से। अंदर क्या है? आत्मा है। ओके, आत्मा में फेथ है, ठीक है, तो आत्मा क्या हो गई फिर, पावरफुल हो गई। तो जब आत्मा पावरफुल है तो उसके जो सबऑर्डिनेट्स होंगे, उसकी जो पावर्स होंगी सटल, वो भी कैसी होंगी, पावरफुल होंगी। तो जब वो पावरफुल है तो हम क्या नहीं कर सकते, फिर वेलनेस हमसे दूर है, दूर वेलनेस नहीं है। तो आप अपने लिए ताली बजा सकते हैं कि आप ऑलरेडी वेल हैं। ओके, अभी आपके सामने एक पिक्चर डिस्प्ले हो रही है, कैन यू प्लीज डिस्प्ले दिस पिक्चर। नहीं, इसी को दिखाकर ही काम कर, ओके ओके ठीक है। इसको आप देख रहे हैं, इसमें कुछ कलर्स हैं और इमोशंस हैं। आप सबके पास पेन और डायरी है, आप इसको नंबरिंग दीजिए, विच इमोशन यू वॉन्ट टू लाइक ऑन द प्रायोरिटी, विच इज द नेक्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। आप कलर वाइज उसको लिख सकते हैं। आपके सामने फाइव इमोशंस डिस्प्लेड हैं, आप कौन से इमोशंस को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, किसको सेकेंड, किसको थर्ड, किसको फोर्थ, किसको फिफ्थ, आपको जस्ट उनको नंबरिंग दे दीजिए। स्टेज गेस्ट भी इसको कर सकते हैं, स्टेज गेस्ट भी इसको कर सकते हैं। हमारे बीच में आदरणीय सूर्या भाई जी भी पहुंच गए हैं, मैं उनका वेलकम करती हूँ। भ्राता जी आकर अपना स्थान लेंगे। सबने कर लिया, ओके ठीक है। तो एक या दो शेयर कर सकते हैं, कौन सा इमोशन, ओके प्लीज, यस ओके, एंड व्हाई। अच्छा ओके, अच्छा क्या सबका सिमिलर है, सबके आंसर सिमिलर है, नहीं ऑलमोस्ट सिमिलर है। किसी का चेंज है तो वो बता सकते हैं, किसी का चेंज है, इनडिफरेंट है आंसर, यस प्लीज ओके। फिर भी क्वाइट सिमिलर है सबका, थोड़ा बहुत इमोशंस को अंडरस्टैंड करने में। तो लेकिन जब आपने पीस या हैप्पीनेस को फर्स्ट प्रायोरिटी दी, उस समय आपके मन में क्या थॉट था, क्या थॉट था? हाँ जी, can't hear you, same emotions you are having, okay, anyone else, okay। तो जिस समय आपने येलो को मार दिया तो आपके मन में क्या भाव थे उस समय, means आप जिसको भी नंबरिंग दे रहे थे आपके फीलिंग्स भी सेम थे उस समय, राइट। तो जिस समय आपने एंगर को प्रायोरिटी दी, चाहे लीस्ट प्रायोरिटी पे रखा, बट वो भी इमोशंस आए, वो भी इमोशंस आपने फील किए। तो वेलनेस किसमें फील की आपने, पीस में। तो दैट मीन्स हर कोई चाहता है मैं वेल हूं, लेकिन हम उस पीस को, उस हैप्पीनेस को कैसे अटेन करें, हम इसको नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे, राइट। तो आपके जो भी इमोशंस डेवलप हुए, ऑन व्हाट बेसिस, बेस्ड ऑन योर थॉट्स, एंड थॉट्स का जो ओरिजिन है वो क्या है, माइंड। तो जब माइंड की हीलिंग होगी तो क्या होगा, हमारे इमोशंस, हमारी वेलनेस हमारे साथ ऑटोमेटिक रहेगी। वेलनेस इज नॉट रिलेटेड ओनली टू डिजीज, बट इट इज रिलेटेड टू योर ओवरऑल वेल बीइंग, राइट। तो इसी के विषय के ऊपर आज एनलाइटन करने के लिए हमारे बीच में आदरणीय राजयोगी भ्राता सूर्य भाई जी, सिस्टर तुलिका सेठ, ब्रदर तपेश सिन्हा जी एंड सिस्टर ईशु हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर से निवेदन करूंगी कि उनका बुके एंड बैजेस के द्वारा अभिनंदन करेंगे, और हम सब कैसे करेंगे, let's radiate the peace, happiness in the environment, so that not only ourselves but the whole environment should be healed through our vibration and thought. हाँ, आप ताली भी बजा सकते हैं. देखिए, जब हम किसी का वेलकम करते हैं तो भी हमें कितनी खुशी मिलती है. तो वो खुशी सब तक पहुंचती है और सबको ही खुशी देती है. तो अभी हम देख लें इन फेसेस को. यदि मैं पीसफुल हूं या मैं हैप्पीस्ट हूं, तो क्या मेरा अभी ये वाला फेस है जो मेरे सामने डिस्प्ले हो रहा है? तो सब एक बार अपने अपने फेसेस को रिफ्लेक्ट कर लीजिए. तब तक सबके फेस के मैं इमोशंस चेक कर लेती हूं कि हैप्पीनेस और पीस वाले आए. सबने चेक की और एक बार सब एक अपने नेबर्स के एक्सप्रेशंस देख लीजिए, पीस और हैप्पीनेस वाले हैं या सरप्राइजिंग है. सब एक दूसरे को देख लीजिए, एक दूसरे को देख के भी सब खुश और हैप्पी हो जाइए. तभी हम सोशल हार्मनी और इकोलॉजी को मेंटेन कर पाएंगे. राइट? नहीं, कोई एक दूसरे को खुश नहीं देखना चाहता? तो सब देखिए एक दूसरे को, सब एक दूसरे को थोड़ी खुशी और पीस दे दीजिए थ्रू योर इमोशन. थैंक यू. एंड नाउ आई विल नॉट टेक मच टाइम. आई विल इनवाइट आर राजयोग के ब्रदर सूर्य भाई जी. ही इज द एग्जाम्पल of will to be well and healing power of mind. दुनिया में तो हम सब कहते हैं कि मन जो है वो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, बट जो हमारे भ्राता जी हैं उन्होंने इसको प्रैक्टिकल लाइफ में सिद्ध करके दिखाया. उनके सारे जो भी एक्सपेरिमेंट हैं वो पावर ऑफ थॉट पर है कि कैसे हम अपने थॉट्स को कंट्रोल करें और अपने माइंड को पावरफुल बनाकर अपने थॉट्स को प्रयोग करें. इनके लिए हम कहते हैं कि मन जीते जगत जीत. तो उन्होंने अपने मन को कंट्रोल किया और आज ये है कि सारे विश्व की आत्माएं इनके पास आती हैं अपनी अपनी प्रॉब्लम्स का समाधान करने. हमारा एक चैनल है पीस ऑफ माइंड, उस पर हमारा प्रोग्राम आता है समाधान. राता जी उस पर सबको सबकी समस्याओं के बहुत सुंदर समाधान बताते हैं. आप 1968 से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सरेंडर रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं. आप जो यहाँ पे ब्रह्मा भोजन स्वीकार कर रहे हैं, राता जी उस भंडारे के इंचार्ज के रूप से निमित्त हैं. और नॉट ओनली दिस कैंपस बट ओवरऑल ब्रह्मा कुमारी के जो तीन कैंपसेस हैं, ज्ञान सरोवर, पांडव भवन एंड नीचे शांतिवन, आप पूरे डिपार्टमेंट्स के हेड हैं और यहाँ से बैठे बैठे आप अपने संकल्पों के द्वारा उसे कंट्रोल करते हैं. तो हम कैसे अपने संकल्पों की सिद्धि के द्वारा हमेशा वेल रह सकते हैं, उसके ऊपर आप हमें एनलाइटन करेंगे. आदरणीय भ्राता सूर्य जी.
ओम शांति. बीज संकल्प ही है, चाहे पीस हो, हैप्पीनेस हो, सुख हो, माइट हो, सफलता हो, संबंधों में मधुरता हो, सबके पीछे मन के संकल्प ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. बहन बोल रही थी, क्रोध तो चलता ही है, जीवन भर चलता नहीं है, चलाया जाता है. Am I right? अगर मनुष्य अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहे तो ये उसके लिए कठिन काम नहीं है. मैं अपनी बड़ी बड़ी सभाओं में पूछा करता हूँ. अभी एक सभा 4000 की थी हमारे पास, दिल्ली ORC है हमारा गुड़गांव में. ऐसे ही क्रोध की बात चली तो मैंने पूछा इस सभा में, किस किस ने अपना बहुत सारा क्रोध छोड़ दिया है, बहुत सारा माने 80-90% तक. तो ये बहुत खुशी की बात थी कि 80% लोगों ने हाथ उठाए और जगह 60 उठाते हैं, यहाँ 80 ने उठाए. तो अगर मनुष्य ये रियलाइज कर ले कि उसका क्रोध बुरा है तो वो उसको छोड़ने का भी प्रयास करेगा, तो वो सचमुच वेल बीइंग हो जाएगा। क्रोधी व्यक्ति को लोग पसंद नहीं करते। ये आप करते हैं? कोई करता हो तो बताओ। क्रोध को कई लोग, आप क्रोध को पसंद करती हैं? पसंद नहीं करती। तो क्रोध एक अग्नि है जो जलाती है। किसको जलाती है? मनुष्य की बुद्धि की शक्ति को, पावर ऑफ विजडम को क्रोध कड़वा कर देता है। मनुष्य के रिश्ते नातों को क्रोध खराब कर देता है। मनुष्य के जवान को, उसके बोल को, क्रोध में मनुष्य कुछ भी बोलता है। यहाँ आप जो कुछ सीख रहे हैं वो एक अच्छा मनुष्य बनने की ही विद्या है। कितना अच्छा बनना है हमें, मैं आपको एक सुंदर सी बात याद दिलाता हूँ। आप में से जिन्होंने ये ईश्वरीय ज्ञान लिया है वो उस बात को अच्छी तरह जानते हैं। हम सतयुग में देवी देवता थे। कौन कौन जानते हैं, हाथ उठाएंगे जरा। सब जानते हैं। वैसा ही अच्छा इंसान फिर हमें बनना, इंसान भी न कहें, मनुष्य देवता। और हम लंबा समय देवत्व से भरपूर थे तो वो देवत्व हमारे अंदर अब भी छुपा हुआ है। है वो हमारे अंदर, हमें उसे जगाना है। लोग प्राय एक बात कहा करते हैं, आप भी कहते होंगे, जब हम कोई बुरा काम करने चलते हैं तो अंदर से एक आवाज आती है नो, और हम उसको छोड़ के वो बुरा काम कर लेते हैं। प्राय लोग ये बात सुनाते हैं। ये एक लक्षण है हमारे अंदर छुपे हुए देवत्व का। प्योरिटी है हमारे अंदर बहुत, ऑनेस्टी है। ये धोखा देना, दूसरों को सताना, बुरे वचन बोलना, जो आज बहुत खेल चल, बुरे व्यवहार के द्वारा डिवोर्स होना, कुछ आज चल रहा है वो हमारी कल्चर नहीं है। आज की कल्चर, इसको भगवान ने कुछ और नाम दे दिया है। तो हम अपने देवत्व को जागृत करेंगे। मैं आपको बहुत दिल की ओर ले चलना चाहता हूँ। ये बात तो आप सुनते हैं। माइंड को मनोवैज्ञानिकों ने तीन रूप दिए, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। हम उसमें दो और जोड़ देते हैं जिनका मनोवैज्ञानिकों को पता नहीं है, हायर कॉन्शियस माइंड एंड सुपर कॉन्शियस माइंड। ये दो बहुत बड़ी चीजें हैं। माइंड अनकॉन्शियस होता नहीं है। माइंड माना कॉन्शियंट, चेतन। लेकिन मनोवैज्ञानिकों ने एक हिस्से को अनकॉन्शियस माइंड भी माना है। अभी बहुत सीक्रेट है, आप ध्यान से सुन लेंगे, क्योंकि मेडिकल साइंटिस्ट भी यहाँ तक नहीं पहुंचे हैं और साइकोलॉजी के साइंटिस्ट भी यहाँ तक नहीं पहुंचे हैं। सुने आप, ये भगवान के वचन हैं, वही ज्ञान का सागर है और वही हमें संपूर्ण ज्ञान देता है। वो ये है, माइंड ब्रेन दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। जो कुछ मनुष्य के माइंड में चलता है वो सब उसके ब्रेन में भी प्रिंट होता है। हम सभी हजारों साल से पुनर्जन्म लेते आए हैं। सतयुग से अब तक हमने पुनर्जन्म लिए हैं। उन सभी जन्मों का सब कुछ इधर प्रिंट है ब्रेन में। उसे मनोवैज्ञानिकों ने अनकॉन्शियस माइंड कह दिया, क्योंकि वो एक्टिव नहीं है, उसका किसी को कुछ पता नहीं है, वो जैसे सोया हुआ ब्रेन है। ये हम सबके पास है। इसलिए देखो, आप आम रूप से भारत में इस कहावत को सुनते आते होंगे कि पाप की गठरी शीश पे, कि मनुष्य के सिर पर पापों का बहुत बोझा है, लेकिन केवल पाप नहीं, पुण्य, देवत्व, हमारी महानताएं, हमारी प्योरिटी, हमारी शक्तियां, वो सब भी इधर भरे हुए हैं। हम उन्हें यदि जगाएंगे तो हम बहुत अच्छे मनुष्यां बन जाएंगे, जीवन की यात्रा का सुख लेंगे। आप इस पे विचार करें, आज मनुष्य जीवन की यात्रा का सुख नहीं ले रहा है। विज्ञान ने बहुत सुखों के साधन दिए, अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गई, जिसका नाम ही आर्टिफिशियल है। कल्याण करेगी वो? नहीं करेगी। मिसयूज होने लगा है, हमें पता चलता है बहुत मिसयूज होने लगा इस विद्या का। तो विज्ञान ने बहुत उन्नति कर ली, डिग्री बहुत मिलने लगी। जब हम लोग पढ़ते थे तो इन कोर्सेज का नाम निशान भी नहीं था। नो डाउट मनुष्य ने बहुत उन्नति की है। उन्नति हुई ब्रेन की, उन्नति हुई बुद्धि की, इन्वेंशंस हुई बहुत ज्यादा, और सुखों के साधन संसार में आ गए। लेकिन मन यदि अच्छा नहीं है, व्यवहार यदि अच्छा नहीं है, परिवार यदि अच्छे नहीं है, बच्चे यदि मोबाइल पे लगे हुए हैं, तो माँ बाप का क्या हाल होता है जानते हैं आप। अभी मेरे को मिले कुछ लोग, रोज मिलते हैं, उनके बच्चे मोबाइल के कारण असफल हो रहे हैं जिंदगी में। तो मोबाइल एक वरदान बन के आया, बहुत कुछ है उसमें। एक समय था हम लोग किसी से फोन से बात भी नहीं कर सकते थे, विदेश में बात करना तो 1000 रुपए पास हो तब बात करेंगे, अब मजे से बात कर लो। ये सब सुखों के साधन विज्ञान ने हमें दिए, मनुष्य ने इनको इन्वेंट किया है, बहुत अच्छी बात है ये। लेकिन मनुष्य ने यदि अपने कर्म नहीं सुधारे, यदि अपने मन को शुद्ध नहीं किया, यदि अपनी बुद्धि को सद्बुद्धि में नहीं बदला, तो ये सब सुखों के साधन फीके पड़ गए हैं। मेरे पास तो लोग आते हैं टेंशन से भरे हुए, दुखों में जीवन व्यतीत करते हुए, डिप्रेशन का बढ़ता हुआ प्रकोप, मानसिक रोगों की सुनामी संसार में चलती नजर आ रही है, भिन्न भिन्न तरह की परेशानियां हो रही हैं। इनको हमें समाप्त करके बहुत अच्छा जीवन बनाना है, जीवन की यात्रा में सुख लेना है, सुख देते चलना है, खुद भी वेलबींग बनना है और दूसरों को भी बनाना है। आजकल वेलनेस हॉस्पिटल भी बहुत खुले हैं, स्वास्थ्य मनुष्य का अच्छा रहे। चूहा भी आ गया सुनने, गिलहरी या गिलहरी तो बहुत आती है। तो तन भी हमारा वेल रहे, मन भी हमारा सुंदर हो जाए, दोनों की ब्यूटी हो जाए हमारे पास। तन बहुत ब्यूटीफुल हो, मन अगली हो, तो जीवन की यात्रा बेकार हो जाती है। दोनों को शुद्ध करना है, हेल्दी बनाना है, बहुत पॉजिटिव रहना है, और अपने मन को ऊंचे विचारों से भरना है। अगर हम पहली बात करें शांति की, हमारे अंदर शांति भरी हुई है, बाहरी चीजों से हमने अपनी शांति को छुपा दिया है। अब यहां राजयोग में आपको अभ्यास कराया जा रहा है, मैं आत्मा पीसफुल हूं। यदि आप इसे एक्सेप्ट करते हुए थोड़ा भी अभ्यास करेंगे, तो न केवल शांति की अनुभूति रहेगी, क्रोध समाप्त होगा, शांति हमारी शक्ति बन जाएगी। हमारी शांति ऐसी हो जाएगी कि हमारी शांति को कोई हमसे छीन नहीं सकेगा। कोई हमारी इंसल्ट कर दे, कोई हमारी ग्लानी कर दे, कोई हमारे आगे बाधाएं डालने लगे, लेग पुलिंग होने लगे, जो कुछ आज संसार में हो रहा है, अगर ये प्रैक्टिस होगी तो शांति हमारी शक्ति बनकर उन चीजों को सहज पार करा देगी। कल भगवान के महावाक्य सुनते हुए हमने एक बहुत सुंदर बात सुनी, बहुत बड़ा सीक्रेट है, लेकिन भगवान जब बोलते हैं तो एक एक लाइन में राज खोलते हैं, और वो लाइन थी, तुम इस देह से डिटैच होकर आत्मा होने का अभ्यास करो। मैं आत्मा हूं, ये शरीर अलग है, मैं अलग हूं, तो तुम्हारी खोई हुई शक्तियां तुम्हें मिलती रहेंगी। राजयोग का बहुत सुंदर अभ्यास है। हम बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गए हैं, बहुत गड़बड़ हुई है, ये सोल कॉन्शियसनेस होने की प्रैक्टिस है। हम अपनी खुशी को देखें, वो जीवन जिस जीवन में खुशी नहीं है वहां तो मनुष्य का एक एक कदम भारी हो जाता है। खुशी हमें अपने अंदर से प्राप्त करनी है, यदि खुशी हम बाहर से प्राप्त करें तो खुशी सबसे महंगी हो जाएगी। खुशी अंदर से उपजती है, हमारा सुंदर चिंतन, हमारी प्राप्तियां, हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में खुशी भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। महावाक्य उच्चारण करते हुए खुश रहने पर अनेक बार सुंदर सुंदर बातें कही हैं, दो चार जो मुझे याद आएंगी मैं आपको सुना देता हूँ। मनुष्य की खुशी समाप्त होती है उसकी एक्सपेक्टेशंस से। एक्सपेक्टेशंस कम करो, खुशी बढ़ जाएगी। सीधा सा सिद्धांत, हमारी खुशी को नष्ट करती हैं जीवन में आने वाली अनेक बातें। मैंने शिव बाबा के महावाक्यों से दो सुंदर बातें सीखी थी अपने जीवन में। बातें बड़ी नहीं हैं, बड़े तो तुम हो। बातें तुम्हारी खुशी को नहीं छीन सकती। बातें बड़ी नहीं, बड़े तुम हो। दूसरी बहुत सुंदर बात, जीवन का बहुत बड़ा सीक्रेट, ये संसार एक ड्रामा की तरह, फिल्म की तरह चल रहा है, कोई भी सीन रुक नहीं रहा है, प्रतिपल यहां दृश्य बदल रहे हैं। इसलिए बाबा ने कहा, बातें तो आएंगी और चली जाएंगी, तुम्हारी खुशी तुमसे जानी नहीं चाहिए। बहुत अच्छा ध्यान दिलाया। परिस्थितियां, बहुत सारी समस्याएं, आने वाली सफलता असफलता, निंदा स्तुति, ईर्ष्या द्वेष, मनुष्य की खुशी को छिन्न भिन्न करते हैं। हमारे राजयोग में एक बहुत सुंदर अभ्यास है, स्वमान की प्रैक्टिस। मैं कौन? एक तो है मैं आत्मा हूं, दूसरा हमारे और स्वमान है, मैं देवकुल की आत्मा हूं, मैं भगवान की संतान, बहुत शक्तिशाली हूं, मैं विश्व कल्याणकारी हूं, मेरे अंदर इस माया को जीतने की शक्ति है, मैं विजयी रतन हूं। इनका जब हम अभ्यास करते हैं, हमारा मन का लेवल, स्पिरिचुअल लेवल बहुत बढ़ जाता है, और तब ये संसार की बहुत सारी बातें जिनमें मनुष्य उलझा रहता है वो हमें बहुत छोटी लगती हैं। मान लो आप जहां कार्य करते हैं वहां कुछ लोग आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, कॉमन बात है संसार की, कोई ईर्ष्या करता है, कोई आपकी गलत कंप्लेंट्स करता है, कोई आपको गिरा देना चाहता है, आपका आपकी प्रमोशन नहीं होने देना चाहता। मैं तो बहुत जगह सुनता हूं, पीएचडी की थेसिस किसी ने लिखी, डिग्री किसी को दे दी, पैसा ले दे के, आप जानते हैं क्या संसार में चल रहा है। जिसने लिखी थी उसका क्या हाल होगा बेचारे का, जिसने बहुत मेहनत की थी। ये सब चल रहा है, लेकिन राजयोग से हमें शक्ति मिलती है। क्या? एक द्वार बंद हो गया, दूसरा खुला है। इसी ने तो हमें रोक दिया, बढ़ाने वाला ऊपर बैठा है, उसने हमारा हाथ पकड़ा है, हम बहुत भाग्यवान हैं, हमें कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। मैं सबको ये बात सिखाता हूं, जिसको आगे बढ़ना है उसे शक्तिशाली बनना चाहिए, उसे अपने विचारों को सुंदर भी करना चाहिए, तो कोई आपको रोक नहीं सकेगा। मैंने बहुत लोग देखे हैं, गरीब लोग देखे जिनके पास कुछ नहीं, निकल गए आगे हिम्मत से, बढ़ते गए। जहां हिम्मत होती है वहां भगवान की मदद बहुत मिलती है, ऐसे ही मांगने से नहीं मिलती। हाथ जोड़े खड़े रहो, हिम्मत का कदम बढ़ाओ, परमात्मा के कदम आपकी ओर बढ़ेंगे और सफलता आपके चरण चूमने लगेगी। तो जीवन एक सुंदर यात्रा है, इसका हमें सुख लेना है। याद रखेंगे एक बहुत सुंदर चीज, जो चीज हम दूसरों को देते हैं वो डबल होकर वापिस हमारे पास आ जाती है। इसलिए जैसा व्यवहार हम दूसरों से कर रहे हैं वैसा ही व्यवहार हमसे भी होगा, ये भूले नहीं। इसलिए अपने व्यवहार को थोड़ा सुंदर बनाएंगे, देंगे, हमारे पास देने की बहुत अच्छी चीजें हैं। आप यहां आकर देने का मन बनाकर जाएं, कोई धन देने की बात हम नहीं कर रहे हैं। एक दूसरे को आगे बढ़ाना, सहयोग देना, प्यार बांटना, खुशियां देना, सुख देना, ये आपके पास आता जाएगा। कड़वे वचन बोलकर हम दूसरों को कष्ट देंगे तो हम कष्टों से कभी बच नहीं पाएंगे। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, रात को नींद नहीं आती, क्या करें, ये समस्या भी बढ़ती जा रही है दुनिया में। गोलियां नहीं होती नींद की, खा के आप सो गए, 10 दिन खाई, ब्रेन डल होता जाएगा, गोलियां बढ़ती जाएंगी, 1 से 2, 2 से 5, ब्रेन डल होता जाएगा, जीवन बेकार होता जाएगा। मैं पूछा करता हूं उनसे, आते रहते लोग, नींद नहीं आती, रात को ऐसा लगता है सो तो गए, दूसरे कहेंगे तुम तो खराटे ले रहे थे, कैसे कहते हो नींद नहीं आती, लेकिन ब्रेन इतना एक्टिव था कि उनको पता ही नहीं चला कि वो सोए भी हैं क्या, सोते हुए भी उनको लगा कि वो जग रहे हैं। मैं आप सभी को फॉर्मूला बता देना चाहता हूं, नींद की समस्या संसार में बढ़ रही है। रात को सोने से पहले कुछ सुंदर विचार करके सोया करें। अगर आप में से किसी को ये समस्या हो, आपके किसी व्यक्ति को समस्या हो, उसे एक चीज बता देना, इसके रिजल्ट आज तक मैंने देखे लगभग 100% सफल हैं, 99% तो हैं। जिसने ठीक से नहीं किया, विश्वास से, उसको नहीं हुआ। देखो, हम भगवान के बच्चे हैं, therefore we are great, हम महान हैं। तो रात को सोने से पहले शांति में बैठकर लिखेंगे, मैं एक महान आत्मा हूं। आत्मा से वाइब्रेशंस ब्रेन को जाएंगे, ब्रेन को साइलेंट करेंगे। जो ब्रेन हाइपर एक्टिव होता है नींद में, वो शांत होगा, नींद का सुख मिलेगा। दूसरा भी लिख सकते हैं, मैं आत्मा शांत हूं, मैं आत्मा शांत हूं। शांति की तरंगे पहुंचेंगी, आपके कमरे में भी, आपकी बेड पर भी शांति के वाइब्रेशन छा जाएंगे, नींद अच्छी आने लगेगी। मैंने ऐसे ऐसे अनुभव देखे, कईयों को तो 7 दिन में नींद आने लगी, समस्या हल हो गई, किसी को 21 दिन में। तो हमें शांति, खुशी, प्रेम, दूसरों को सहयोग, जितना हो सके आगे बढ़ने में मदद करनी ही चाहिए, यही मानवता है। हमारी भावनाएं भी बहुत काम करती हैं। एक अच्छा मनुष्य वही होता है जिसके मन में सभी के लिए शुभ भावनाएं भरी रहती हों, जो सबका कल्याण चाहता हो। भले ही संसार में आज एक बात बहुत सुनने को मिलती है, हम जिसका भला करते हैं उसी से धोखा मिलता है, तो क्या भला करना छोड़ दें? बहुत आते हैं ऐसे लोग, जिसका अच्छा किया उसी से गड़बड़ हुई, छोड़ दें, हमारा तो उत्तर होता है बिल्कुल नहीं। तुम अपनी महानताओं को बिल्कुल नहीं छोड़ना, वो अपनी गलत चीजों को नहीं छोड़ते, वो जिम्मेदार हैं इसके। हम अपनी महानताओं को, अपनी योग्यताओं को, अपनी खूबियों को दूसरों को देखकर छोड़ेंगे नहीं। बहुत जरूरी है एक अच्छा मनुष्य बनने के लिए, देवत्व की ओर चलने के लिए श्रेष्ठ कर्म करना, पुण्य कर्म करना। और मैं एक बात आपको कहूं, आप अपने को भी देख सकते हैं और संसार को देख सकते हैं, इस संसार में बहुत कम लोग मिलेंगे जिन्हें ये पता होता हो, रियलाइज होता हो कि मैं कहां गलती कर रहा हूं, कर रही हूं। अधिक लोग सोचते हैं आई एम राइट। जो माफिया भी हैं, दूसरों की जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं, जिन्होंने गड़बड़ कर दी है, वो भी सोचते हैं हम तो राइट हैं, ये नेता भी तो कर रहे हैं, फलाना भी तो कर रहा है, वो भी तो कर रहा है, हमने किया तो क्या हुआ। लेकिन मनुष्य को भूलना नहीं चाहिए, कर्म मनुष्य का पीछा कभी नहीं छोड़ते। हमने कुछ भी गड़बड़ की, उसका फल कई गुना हमें मिलता ही है। एक सिद्धांत आपको सुना देता हूं, बहुत सूक्ष्म फिलोसॉफी है वो, इस संसार की। देखिए बहुत सिंपली, जो कुछ हम कर रहे हैं, जो कुछ हम सोच रहे हैं, जो कुछ हम बोल रहे हैं, उसकी तरंगे चारों ओर फैल रही हैं, कर्मों की भी वाइब्रेशंस चारों ओर फैलते हैं। वो जा रहे हैं प्रकृति में, हमारे चारों ओर प्रकृति है, यही हवा है, लाइट है, गर्मी है, जल है, ये सब हमारे वाइब्रेशंस प्रकृति में जा रहे हैं और प्रकृति के साथ ये रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन होता है, और रिएक्शन करके वही चीजें क्रिएट करके प्रकृति हमें वापिस कर देती है। यह कर्मों का सिद्धांत। इसलिए कर्म फल से बड़ा छोटा महात्मा कोई भी बच नहीं सकता, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है। इसमें कोई भगवान ही कुछ करता हो वो नहीं, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है। इसलिए हमें अपने पुण्य कर्मों को भी बहुत बढ़ाना चाहिए। कर्म सुधारेंगे, एक व्यक्ति अपने कर्म अच्छे करता है, एक को देखकर दूसरा, और ये चेन बनती है, और इस संसार में पुण्य कर्म करने का एक प्रवाह फैलेगा। तो हम यहाँ सभी को कहते हैं, जो भी हमारे पास आते हैं, पुण्य कर्मों के बीज बो दो, खेती होगी। एक बीज से कितना कितनी खेती होती है, सीखेंगे लोग पुण्य कर्म करना, इस संसार से पाप की गंदगी समाप्त होगी और संसार में पुनः सुखों का साम्राज्य आएगा। पाप के कारण दुख है, भूलना नहीं चाहिए। जिस मनुष्य के साथ जो भी हो रहा है उसके जिम्मेदार उसके कर्म ही हैं। एक व्यक्ति बीमार होता है, बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, उसके पुण्य कर्म, उसकी दुआएं उसको मदद कर रही हैं। दूसरा व्यक्ति बहुत धनवान है, उसको कैंसर होता है, ठीक ही नहीं हो पाता, पीड़ा होती रहती है, ये उसके कर्म उसके जिम्मेदार है। कैंसर में रेडिएशन दिया जाता है, कीमोथेरेपी दी जाती है। कीमो का अर्थ होता है इंजेक्शन लगा दिया, अंदर अग्नि पैदा कर दी, ताकि जो वायरस हैं कैंसर के वो जल के नष्ट हो जाएं। लेकिन मैंने देखा किसी किसी व्यक्ति को कीमोथेरेपी देते ही इतना कष्ट हो जाता है कि वो व्यक्ति तड़फने लगता है। दूसरे व्यक्ति को 8 कीमो दी, ऐसा ही लगा, मामूली इंजेक्शन दे दिया, नो बैड इफेक्ट। ये कर्मों का खेल चल रहा है। इसलिए हमारे अंदर देवत्व है, हम उस देवत्व को जागृत करके पुण्यों की खेती करेंगे, हमारा वर्तमान भी सुखी, हमारा भविष्य भी सुखी, हमारे जन्म जन्म सुखी होंगे। मैं फिर उस बात को जरा क्लियर कर दूं, हमारे अनकॉन्शियस माइंड में हमारा 2500 वर्ष का देवत्व भी भरा हुआ है। वो सोया है, हमें उसे जगाना है। राजयोग से वो जगता है, आत्मिक अभ्यास से वो जगता है। जो स्वमान को जानते हैं, स्वमान के अभ्यास से वो देव संस्कार जागृत हो जाते हैं। इसलिए ये जो राजयोग का पथ है, जो स्वयं भगवान ने सिखाया है, ये मनुष्य का नहीं है। इसके द्वारा हम अपने वर्तमान को, भविष्य को बहुत सुंदर कर सकते हैं। साथ में जो पास्ट हुआ है, जिसके सटिल इम्प्रेशन हमारे अनकॉन्शियस माइंड में भरे हुए हैं, जिसकी यादें मनुष्य को चैन से नहीं रहने देती हैं, उसको भी डिलीट करने का ये सर्वश्रेष्ठ साधन है राजयोग। राजयोग में हम सर्वशक्तिवान से एनर्जी लेते हैं, उस एनर्जी से दो काम होते हैं, देवत्व जगता है, पाप कर्म जलते हैं। इसलिए आप यहाँ आए हैं, राजयोग बहुतों ने सीख लिया है, आप सीख लेंगे, हमारे अंदर बल आएगा, हम जो करना चाहते हैं अच्छे काम वो हम कर सकेंगे, जो हम नहीं करना चाहते न करने की शक्ति आएगी। नहीं तो मनुष्य ये शिकायत करते हैं, हम ये काम करना नहीं चाहते पर कर बैठते हैं, फिर पछताते हैं। तो आप एक बहुत सुंदर स्थान पर आए हो, देवत्व आपका यहाँ जगना प्रारंभ हो गया है या नहीं हुआ है, आपको शायद पता ना चलता हो, वो शुरू हो गया है। यहाँ की वाइब्रेशंस में ही वो जादू है। किसी का मन शांत होता है, किसी का तनाव समाप्त हो जाता है। जिस स्थान पर आप आए हो, हमारे ईश्वरीय ज्ञान में चलने वाले बहुत सारे लोग यहाँ एक रात भी आकर रहना चाहते हैं, लेकिन सदाई प्रोग्राम चलते हैं तो उनको मौका नहीं मिलता। आप सब बहुत भाग्यवान हैं। लास्ट बात आपको कहता हूँ, आपका जीवन बहुत आनंदित हो जाए। रोज सवेरे उठकर स्वयं को सुंदर संकल्पों से चार्ज करना है, सुंदर संकल्पों से, ताकि जीवन में निराशा ना हो। निराशा बहुत ज्यादा फैली है संसार में। कैसे होती है निराशा? देखो, मेरे पास तो बहुत एग्जाम्पल है। माताएं अपने बच्चों को लेकर आती हैं। एक उदाहरण मेरे पास सबसे पावरफुल रहा है, पीछे ही कुछ दिन पहले ही आई वो बहन, माता अपनी लड़की को लेके, बहुत साहूकार घर की, ये नीट का एग्जाम दे रही थी, इसको डॉक्टर बनना है। 3 बार असफल हो गई। अब ये इतनी निराश है, इसने बोल दिया है मैं सुसाइड करूंगी। अब बोलो उस परिवार का क्या हुआ होगा। बहुत समझाते हैं, दोस्त की फ्रेंड्स को साथ रख दिया है, ले आई यहाँ, वो पहले भी आती थी जब छोटी थी, मेरे को मिलाया, मैंने उसको कन्विंस किया, हो सकता है शिव बाबा तुम्हें डॉक्टर न बना के कुछ और बड़ा बना देना चाहता हो। मैंने कहा पता नहीं कोरोना में डॉक्टरों को कितना कष्ट हुआ। मैंने थोड़ा उसको हंसाया, डॉक्टर बेचारे वो किट पहने रखते थे और एसी चलाना भी मुझको वो मना था, ये पैरों से, पंजों से और घुटनों तक की जो उनकी पैंट होती थी ना टाइट, उसमें पानी भर जाता था पसीनों से, घुट जाते थे, कितनों की मृत्यु हो गई। मैंने कहा हो सकता है भगवान तुम्हें सुख भरा जीवन देना चाहता हो, छोड़ो इसे, डॉक्टर तो दुनिया में लाखों हैं, तुम्हें कुछ और बनना है। तब वो हंसी, पहली बार हंसी बहुत समय से। उसकी माँ भी खुश हुई और उसका पहरा भी हटा। मैंने कहा तुम बीएससी करो और यूपीएससी का एग्जाम देना, तुम्हें शिव बाबा कलेक्टर बनाना चाहता है, बहुत को तुम सुख दे पाओगी। तो सवेरे उठते ही अपने को पॉजिटिव संकल्पों से भर देना, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, बहुत सुखी हूँ, बहुत शक्तिशाली हूँ, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमेशा एक संकल्प करना सवेरे उठ के, मेरा गुड टाइम आ गया है, मेरा सुनहरा समय आ रहा है। ये नहीं कैसे बुरे दिन आ गए, कभी नहीं बोलना इधर सिर पे हाथ मार के क्या हो गया, ये नहीं, जो आप सवेरे सोचेंगे सबकॉन्शियस माइंड वही करेगा। इसलिए मैं बहुत भाग्यवान हूं, बहुत सुखी हूं। एक द्वार बंद हो जाए, दूसरा द्वार खुला है। एक ही जगह मनुष्य आनंदित नहीं हो सकता, एक ही जगह वो सफलता के मार्ग पर चलकर चोटी पर नहीं पहुंच सकता। बहुत सारे मार्ग हैं संसार में। हिम्मत नहीं हारना, निराश नहीं होना, सवेरे रोज पॉजिटिव संकल्पों से अपने को चार्ज करना और देखना आपके जीवन की यात्रा आनंद से भरपूर होगी। आनंद से ही नहीं, भगवान आपका साथी बन जाएगा। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।
थैंक यू भ्राता जी, आपने बहुत सुंदर संकल्पों के साथ हमें बताया कि हमें डेली इन स्वमानों की प्रैक्टिस करनी है। सब रात को श्रेष्ठ विचार करके सोए, शुभ भावना, शुभ कामना और पुण्य कर्म को बढ़ाना। तो एक मिनट के लिए जो अभी भाई जी ने हमें इतने सुंदर श्रेष्ठ संकल्प दिए हैं, हम मन में उनको रिपीट करें। मैं बहुत भाग्यवान हूं, मन ही मन रिपीट करें, अपने मन में बात करें, मन से बात करें। मैं बहुत सुखी हूं, मेरे साथ सब अच्छा होगा, मेरा सुनहरा समय आ गया है, इसको महसूस करें। थैंक यू। शांति। तो बहुत सुंदर उन्होंने हमें ना केवल विधि ही बताई, परंतु हम सबको चार्ज भी कर दिया, हमारे माइंड की हीलिंग भी कर दी। तो हम बहुत ही अच्छी तरीके से भाई जी का करतल ध्वनि से थैंक्स करेंगे। हमारे बीच में अभी अपने विचारों को लेकर इसी विषय पर आ रहे हैं डॉक्टर तुलिका सेठ जी। आप सीनियर प्रोफेसर हैं हेमेटोलॉजी में एम्स हॉस्पिटल दिल्ली से। आप चेयरपर्सन हैं डिसेबिलिटी गाइडलाइंस फॉर ब्लड डिसऑर्डर गैजेट ऑफ इंडिया मार्च 24 से, चेयरपर्सन फॉर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मोटा 2022 से, टॉट फॉर सिकल सेल डिजीज with panel of Indian experts drafted Government of India National Guidelines for Thalassemia and Sickle Cell Anemia 2016, co-founded Gap Health NGO for dissemination of genomic awareness, served as Delhi School of Public Health founding member and on expert board till 2023. You were a resource person who initiated haplo-BMT HSCT for multiple sclerosis and second in hematology department. You are guide and co-guide for more than 50 DM PhD MD students. You are author of more than 250 papers and more than 60 books chapters. Examiner National Board examinations for clinical hematology. Member JNU Stem Cell Ethics Committee ICSCR, member AIIMS PG Ethics Committee, member National Consortium for Research and Development on Therapeutic for Rare Diseases Hematology Expert Group, member ICMR NIRTH Scientific Advisory Committee SAC, on Executive Board of various professional bodies, and you are serving on the board of International NGO NNHF that supports hemophilia care. So Tulika Sedji, please enlighten your views on this. Thank you.
Namaskar. So firstly, I'd like to thank the BK organization and Spark for this wonderful opportunity. I am humbled to be addressing such a learned audience. Thank you so much. I am a doctor and I mostly give medical conferences on medical topics. So here I'm going to be talking a little bit different from blood cancer, bone marrow transplant and or is tarah ki jo teevra bimariyan hain, and aap log sab स्पिरिचुअल पाथ में मेरे से बहुत लर्नेड हैं, बहुत आगे हैं, एंड मैं राहुल जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ जो ये मेरे बेटे की उम्र के समान है बट मेरे को इस पथ पे लाए हैं. एंड अरुणा जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस हियर. सो मेरा सौभाग्य कि मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ. सो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. द टॉपिक आई एम गोइंग टू इंटरप्रेट स्लाइटली डिफरेंटली. आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट पॉजिटिविटी एंड विल पावर. इन माई एक्सपीरियंस treating patients for over 30 years with diseases like blood cancer, lymphoma, multiple myeloma and many other problems, I see that all our patients are individuals, and some patients are able to handle things better, some patients need a lot more help. And the two things that I think are really important in order to be a good patient are willpower and positivity. So how does willpower help you in your road to healing? So willpower se kai cheeze hoti hain. Ek to hum jab sick nahi hai, jab apne normal state mein hai, so it can help you prevent illness. So aapka agar willpower acha hai to aap wo extra mithai nahi khayenge. Aapka jab man kar raha hai relax karne ka to aap exercise karenge. So these are a few minor things that we can do. But there is also a very important mind-body effect. And this mind-body effect has been beautifully discussed by all of the wonderful speakers here. And I don't think I need to talk about that. But it is in science also that we know that things like fasting. Fasting can actually prevent cancer. Our body has a huge mechanism of healing, and one of them is called autophagy, in which after meditation, fasting and other processes, the body can actually heal itself. And we forget about these things. But by having a good willpower, we can adopt healthy habits. And these healthy habits not only can move us and keep us in a state of health, but they can help us make good connections and relationships. These connections and relationships are also important not only for your physical health but also for your mental health and well-being. And these relationships and connections help us when we become sick. We often forget about that. So the mind-body effect can boost your happiness, it can improve your sense of well-being and help you make these positive actions for your body. Now, in my work with dealing with patients with blood cancer and other serious disorders, I would firstly and firmly like to state that you cannot heal yourself by willpower alone and by positivity alone. If somebody has a serious problem, you must go to a doctor, you must take treatment. But having good willpower will help you stay on the treatment, because many of the treatments are very long and difficult. Ke jo ilaaj hote hain wo itne mushkil hote hain aur lambe hote hain, mehenge bhi hote hain. So if you need a lot of willpower, you need a lot of positivity in order to continue with that. So that's really important. Also, we sometimes when we're sick, the patient loses a sense of identity and loses a sense of purpose. So having positivity and having good willpower helps you avoid the depression. When we talk about a diagnosis of cancer, it is a very traumatic experience. And patients go through what we call the Kubler-Ross stages of grieving. So, जब भी आपको कुछ दुख होता है तो आप पांच स्टेजेस से निकलते हो. शुरू में तो डिनाइल होता है, यू नो ये तो है ही नहीं, ये तो मुझे हो ही नहीं सकता है. देन यू हैव एंगर, देन यू हैव बार्गेनिंग, देन यू हैव डिप्रेशन एंड देन यू कम टू एक्सेप्टेंस. सो अंटिल द पेशेंट कम्स टू एक्सेप्टेंस, दे आर गोइंग टू कीप यो-योइंग थ्रू दीज डिफरेंट इमोशंस. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कम टू अ सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस. Then only you can take your treatment, and that is where your willpower and positivity is important. We know that when people are in a depressed state or when they're very upset or stressed, there are many cytokines and chemicals that are in our body, and that was discussed yesterday very nicely by Dr. Dhar. And these cytokines and chemicals are there actually in a balanced state in our body to keep us in health. So if we have an infection, we have certain cytokines and chemicals which are able to fight the infection. If we have some damage in our body, we have other cytokines and chemicals that help to repair that. It is when these are in disbalance, then we can get into abnormal states. And by practicing relaxation techniques, by having a good support system, by maintaining positivity and having good willpower, we can actually help these chemicals get into a better state, which may help you while you are undergoing your treatment and help avoid toxicity. Or even if you have toxicity with the medicines, you can explain it to your doctor and you can get better. Many times jo problems hoti hain wo patients batate nahi hain, late batate hain, unko lagta hai ki kuch fayda nahi hoga. So if you truly believe that, you know, nothing is going to happen, it usually comes true. There is another scientific phenomena called the placebo effect. Now, a lot of times people believe that a placebo is just a fake medicine, but if you believe that that medicine is going to help you, even a placebo taken, which is not the medicine, can actually cure patients. And that is the way that the mind is so powerful and it controls the body. And similarly, if you believe that the medicine is bad and it's not going to help you, there is something called a nocebo effect. And that also happens. And we see that sometimes with patients who blame the medicines and they say that no, it's not going to help them. It sometimes doesn't help them. So these are some of the things that I wanted to talk about. We have seen many examples of patients where they have been in extremely difficult situations. I work at AIIMS, it's a government hospital. We have patients who come from all societies and all classes. And I've seen the most difficult situations where a mother has a child with blood cancer, she loses her husband, and yet they have the willpower and the positivity to see these things through. And I'm blessed to see many of these families many years later on, and we find that they're doing very well. There are amazing stories of resilience and of love that we see every day, and I think that's what inspires us all. But unfortunately, we also see the darker side of society where somebody has cancer and the family abandons them, or they don't have the family support. So it's really important to have organizations like this that can make us accept patients. We also need to have very realistic expectations. So as a doctor, since I have an opportunity to talk to you, I would like to explain that we must sometimes accept things. And I have a real life story from two cousins in my family, both of whom had an elderly relative who had blood cancer. And one of them I advised to take very simple treatment and not to be over aggressive. But he wanted to cure his father. He consulted with many doctors and he planned on a very, very aggressive treatment. And unfortunately, he lost his father in just a few days. While the other cousin, who again had a very elderly relative, and I advised them to just take things easy and not do anything, the relative survived for several years and had extremely good quality of life. So it's really important to discuss with the doctor and to tell them everything so that they can help you as much as possible. I truly believe that cancer should not be something that is feared. It is an accident. It can happen to anyone. And we have very good treatments for it, even though a lot of people are afraid of chemotherapy, but the chemotherapies we have now are very safe and very effective. So it's a good idea to talk to your doctor, as I said, and to not be fearful. And I think if you are at peace with yourself and at peace with God, you will definitely be able to heal yourself. So with that, I would like to thank you again. It's been a pleasure speaking to you all. Thank you.
Thank you so much, Dr. Tulika Sethji. The first step of acceptance, that is playing the most important role to heal our body, because acceptance is the first step when mind accepts what disease is there in your life, and then it reacts in a positive way, so the body also responds, and that resonation works to heal your health, your disease. So thank you so much. Now I'll invite Sri Tapesh Sinha ji. He's from presently holding the position of scientist F/Additional Director. He has published many papers, delivered several talks at different platforms, and has many awards to his credit. He has done his master's degree in library and information science from DTU Gorakhpur University, and presently working in DRDO. He joined the DRDO in 2005. So I request Sapesh Sinhaji to deliver his views on today's topic, Will to Well, the Healing Power of Mind. Shri Sapesh Sinhaji.
नमस्कार, ओम शांति। आदरणीय गणमान्य महानुभाव, जो मंच पे भी जो विभूतियां बैठी हुई हैं, सभागार में बैठे श्रोतागण और मे भाइयों और बहनों, जैसे भाई सूर्य भाई जी ने जो जीवन की जो लेसन्स हैं उनके बारे में बताया, स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताया, मैडम तुलिका डॉक्टर हैं, उन्होंने डिजीजेस के बारे में बताया, डिजीजेस के को कैसे लड़ा जाता है जीवन में, विल पावर कितनी स्ट्रांग रखनी है उसके बारे में बताया। तो चूंकि मैं एक वैज्ञानिक हूं और मैं स्पिरिचुअलिटी और साइंस के बारे में थोड़ा सा बात करूंगा और डीआरडीओ के बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा। मैं धन्यवाद करता हूं दिनेश अग्रवाल जी का, जो इस संस्था से विगत काफी वर्षों से जुड़े हुए हैं और समय समय पर डीआरडीओ के बहुत सारे लोग यहाँ पे इस कैंपस ज्ञान सरोवर में और ब्रह्म कुमारीज में आते रहे हैं, अलग अलग मानेसर में भी और भी जगहों पे। मैं यहाँ इस कैंपस में दूसरी बार आया हूँ। मैं पहले 2007 में मैं आया था एक यूथ कॉन्फ्रेंस में और मेरा सौभाग्य, मेरा बहुत मन था कि मैं माउंट आबू फिर दोबारा आऊँ ज्ञान सरोवर में, तो मेरा सौभाग्य है, मैंने दिनेश जी से बात की और ये कॉन्फ्रेंस SIR कॉन्फ्रेंस जो है 18वीं SIR कॉन्फ्रेंस मुझे आने का सौभाग्य मिला और मुझे, मैं जब भी आता हूं मुझे बहुत खुशी होती है यहाँ पे। और जो इस सेशन का जो जो व्याख्या, मतलब जो टॉपिक है, जो शीर्षक है और जो गणमान्य लोगों ने जो व्याख्यान दिए हैं इस पे, वो है विल टू बी वेल, द हीलिंग पावर ऑफ माइंड। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि जो भी जीवन में एक मनुष्य के पूरे जीवन काल में जो भी कुछ होता है वो माइंड और सोल से जुड़ा हुआ है। अगर आपका माइंड पॉजिटिव है तो आप जीवन में बहुत कुछ ऊंचाइयां हासिल कर सकते हैं, पर अगर आपके माइंड में कोई कितने भी बड़े ओहदे पर हो, अगर आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिविटी हैं, तो आप पतन की ओर जाओगे, ऊंचाइयों पे नहीं जाओगे। आपके पास कितने भी रुपए पैसे हो, कितने भी धन दौलत हो, कितनी भी चीजें और हो सुख समृद्धि के, पर अगर आपके थॉट्स नेगेटिव हैं तो आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते और माइंड को कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपका सोल जो है, जो आपकी आत्मा है, वो भी स्थिर नहीं रहेगी और अब आप अपनी चीजों को कार्य कुशलता से नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मैं डीआरडीओ में वैज्ञानिक हूं, डीआरडीओ जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं वो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो कि रक्षा विंग है डिफेंस की। जैसे डिफेंस में नॉर्मली कई सारे विंग्स हैं, एक है आपका जो सर्विसेज पार्ट है वो है आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, फिर इसका रक्षा अनुसंधान है जो डीआरडीओ कहलाता है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, और उसके अलावा ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं, प्रोडक्शन है, डिफेंस प्रोडक्शन है, बहुत सारी चीजें हैं। तो डीआरडीओ का बहुत ही अहम रोल है देश की सुरक्षा में, सुरक्षा के लिए। और डीआरडीओ जो ब्रह्म कुमारीज के साथ भी मैंने सुना है कि काफी सारे प्रोजेक्ट्स अलग अलग जगहों पे कर रहे हैं, साइंस में साइंस को बढ़ा रहे हैं, बट डीआरडीओ में साइंस और रक्षा, जो देश की सुरक्षा है उसके लिए क्या प्रणालियां डेवलप की गई हैं और उसमें क्या क्या तकनीकी जो चीजें हैं जो दिन पर दिन आगे हम कर रहे हैं वो डीआरडीओ लेके जा रहा है। और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने डीआरडीओ के कार्य कुशलता में सुधार के लिए कुछ वर्षों में नए नए उपाय किए हैं। डीआरडीओ जो है एक 55+ प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क है, 55 से ऊपर इसकी प्रयोगशालाएं हैं देश के हर कोने में, अलग अलग शहरों में, और इसके जो अगर मैं बात करूं 7 क्लस्टर्स हैं और अलग अलग विभिन्न विभिन्न विभागों में डीआरडीओ कार्यरत है देश की सुरक्षा में, और इसमें कम से कम 10,000 वैज्ञानिक काम करते हैं और इसमें अलग अलग फील्ड्स में जैसे एरोनॉटिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में, मिसाइल टेक्नोलॉजी में, लाइफ साइंसेज में, डीआरडीओ की एक प्रयोगशाला है लद्दाख ले में, बहुत ऊंचे लेवल पे वो जो, उसके बाद फूड रिसर्च लेबोरेटरी है हमारा मैसूर में, पुणे आर्मामेंट की है। तो ऐसे अलग अलग 7 क्लस्टर्स हैं डीआरडीओ के जो देश की सुरक्षा में निरंतर प्रयासरत हैं और निरंतर काम कर रही हैं। जब हम साइंस की बात करते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करते हैं, वैज्ञानिकों को भी अपने कार्य में बहुत ही स्ट्रेस से गुजरना पड़ता है। कई बार सरकार की तरफ से, ये आपने मीडिया में या अलग अलग उसमें, डीआरडीओ ने बहुत कुछ किया है। यहाँ पे बात इंडिजिनाइजेशन की हो रही है, इंडिजिनाइजेशन की बात है। जैसे आपने देखा होगा कि डीआरडीओ ने तेजस एयरक्राफ्ट डेवलप किया है, और जो डीआरडीओ की जो एरोनॉटिक्स का पूरा हब है वो बेंगलुरु में है। बेंगलुरु का जो पूरा जो शहर है उसमें एरोनॉटिक्स पे काम होता है अलग अलग एयरक्राफ्ट में, उससे डीआरडीओ कोलैबोरेशन भी करता है, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, सीएसआईआर की भी लेबोरेटरीज हैं, वो भी नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी है बैंगलोर में। तो बैंगलोर की जितनी प्रयोगशालाएं हैं वो एरोनॉटिक्स फील्ड में काम कर रही हैं। उसी तरह हैदराबाद में जो प्रयोगशाला है वो मिसाइल टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है। आपने मिसाइल्स के बारे में सुना होगा, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, ब्रह्मोस। तो इसमें जो 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 माइंड की मैं क्यों कनेक्ट कर रहा हूं कि यहां पे निरंतर वैज्ञानिक और अलग अलग जो तकनीकी अधिकारी हैं वो निरंतर काम कर रहे हैं रक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में, प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी जो बहुत उनको सपोर्ट है। और आने वाले समय में जो रक्षा तकनीक के क्षेत्र में जो विकास होगा वो होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, कॉग्निटिव साइंस पे, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पे, आजकल न्यूक्लियर बायोलॉजिकल और केमिकल वॉरफेयर पे काम हो रहा है बहुत सारा। तो एक वेरी डिसिप्लिन है जिसपे डीआरडीओ काम कर रहा है। जब वैज्ञानिक अपने प्रयोगशाला में काम करते हैं तो उन्हें तरह तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए अपने माइंड को स्थिर रखना और उसको अपने कार्य क्षेत्र में उतारना, ये बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। आप जैसे ब्रह्मोस मिसाइल की बात करें जो भारत ने रशिया के साथ मिलकर डेवलप किया हुआ है, तो उसमें कई वर्ष लग जाते हैं किसी भी प्रोडक्ट को डेवलप करने में, और उस पर बहुत सारा फंड्स की जरूरत होती है। एक मिसाइल को फायर करने में 400-500 करोड़ रुपए खर्च होते हैं सरकार के। आपने जैसे इसरो का देखा था जब चंद्रयान की फेलियोर हुई थी, बट वैज्ञानिकों का जो वो विल पावर था वो इतना स्ट्रांग था कि उसके बाद चंद्रयान जो लॉन्च हुआ, चंद्रयान 3 जो है वो आप सबके सामने है। तो जो विल, जो पावर है वो सबसे जरूरी है। और जब आप अपने कार्य क्षेत्र की बात करते हैं, घर की बात करते हैं, क्योंकि एक वैज्ञानिक को अलग अलग चुनौतियों से गुजरना पड़ता है। उसको अपने घर में भी चीजों को देखना है, अपने कार्य क्षेत्र में वो निरंतर रात के 12 एक बजे तक भी निरंतर प्रयोगशाला में उन्हें काम करना पड़ता है। एक डेडलाइंस होती है जिसको हम अपने डीआरडीओ के कॉन्टेक्स्ट में पीडीसी कहते हैं, उसको प्रोबेबल डेट ऑफ कंप्लीशन। एक प्रोजेक्ट सैंक्शन होता है उसमें 3 से 4 साल में आपको वो डेवलप करना पड़ता है। कई बार वो डेडलाइंस मीट नहीं हो पाती तो सरकार की तरफ से भी दबाव होता है उसको पूरा करने के लिए। तो उसके लिए ऐसी संस्थाएं जैसे ब्रह्म कुमारीज वगैरह हैं, या आप किसी भी स्पिरिचुअलिटी से अगर जुड़े हुए हैं तो आपका माइंड और सोल जो है वो एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ रहेगा। इसीलिए यहाँ पे डीआरडीओ के बहुत सारे लोग आते हैं समय समय पर और बहुत कुछ लेके जाते हैं यहाँ पे, जिसको हम टेक अवेज कहते हैं। आप किसी भी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं वहां बहुत सारे लर्नेड लोग होते हैं जो बहुत सारी चीजों को आपको बताते हैं। और ये हमें अपेक्षा करते हैं कि आप किसी भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन या रिसर्च इंस्टीट्यूशन या कहीं कॉन्फ्रेंस, सेमिनार्स, सिंपोजिया में जाएं तो वहां बहुत सारी चीजें सुनते हैं, बट उसमें से कुछ चीजें हमें टेक अवे ले जानी चाहिए और उसको अपने जीवन में, अपने कार्य क्षेत्र में उसको निष्पादित करना चाहिए। उसको जैसे मैं यहां से कुछ, मैंने बहुत सारा, मैं पहले भी आया हूं और ऐसे भी मैं सुनता रहता हूं टीवी पे, जो शिवानी जी हैं उनका बहुत सारा, हमारे ग्रुप भी बना हुआ है उसमें। तो ऐसा नहीं है हर इंसान हर कुछ नहीं ले सकता, बट अगर आप अपने इस कॉन्फ्रेंस में अगर हम आए, अगर हम 4 से 5 चीजें भी अपने जीवन में उतारते हैं तो निश्चित ही हम एक सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। अब मैं नॉर्मल जीवन की बात करता हूं, जो किसी भी मनुष्य के जीवन में जो सबसे बाधित करने वाली चीज है आज के समय में, जो मुझे फील होता है, एक है ईर्ष्या, अहंकार और संतोष का ना होना। आप कितने भी सफल हो जाएं आज के परिपेक्ष में, पहले के 20, 30 साल, 40 साल पहले की बात करें तो लोगों में संतोष होता था, आज के जमाने में संतोष नहीं है, लोगों में सेटिस्फैक्शन नहीं है। आप जैसे हम जैसे मैंने साइंटिस्ट बी में ज्वाइन किया था जो एंट्री लेवल है डीआरडीओ में, मैं अभी साइंटिस्ट एफ रैंक पे पहुंच चुका हूं और तो इच्छाएं कभी वो नहीं होती। तो जब आप अपने कार्य क्षेत्र की बात करें, प्रमोशंस की बात करें, कई जैसे अभी बताया भाई जी ने भी कि और लोगों ने भी बताया कि जैसे आप एक कार्य क्षेत्र में दो लोग काम कर रहे हैं, दोनों अच्छा काम कर रहे हैं, एक की प्रमोशन हो गई कार्य क्षेत्र में, दूसरे की नहीं हो, तो दूसरे को दूसरे से ईर्ष्या होती है। ईर्ष्या सबसे बड़ा बाधा है इंसान के विकास में, और उससे वो अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकता। वो हमेशा परेशान रहेगा, चाहे उसके पास से बहुत सारी चीजें हैं। जो चीजें मनुष्य के पास है वो उसको दिखाई नहीं देती, जो उसको दूसरे की खुशी दिखती है, पर आपके पास जो है, आपके पास जो है उस पर आपको सेटिस्फेक्शन रखना है, तभी आप ऊंचाइयों पर पहुंच पाएंगे। आज का यूथ जो है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज की निश्चित तौर पे कमी है, जैसे रोजगार वगैरह के ऑफिसर जो हैं, अगर आपने बहुत ऊंची पढ़ाई की है, आप आईआईटी से पढ़े, आईएम से पढ़े और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से पढ़े जो इंटेलिजेंट है, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है। बट एक एवरेज स्टूडेंट है, एक एवरेज विद्यार्थी है, उसको बहुत चुनौतियों का सामना करना है। आजकल सरकारी नौकरियां भी कम हो गई हैं, जगह जगह पे नौकरियों को, क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मैंडेट है वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ है। जो टैलेंटेड विद्यार्थी हैं, जो टैलेंटेड यूथ हैं, जो युवा हैं, वो तो अचीव कर सकते हैं, पर जो एवरेज स्टूडेंट, उनको बहुत मेहनत करनी है, क्योंकि चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं। तो उन चैलेंजेस को जीवन में पूरा करने के लिए आपके माइंड को स्थिर होना बहुत जरूरी है। उसके लिए इस तरह की संस्था जो स्पिरिचुअलिटी पे बात करती हैं, चाहे आप किसी भी भगवान को मानते हो, किसी भी गॉड को मानते हो, आप उस राह पे अगर चल रहे हैं तो आपको अपने माइंड को, अपने सोल को पॉजिटिविटी की तरफ ले जाना है, पॉजिटिव थॉट्स रखने हैं, जिससे कि बौद्धिक विकास हो, शारीरिक विकास हो, जिससे कि आप अपने घर परिवार को और अपने कार्य कुशलता, अपने कार्य क्षेत्र को में अपने सारे जो हैं चीजें हैं उसको आप अच्छे से निष्पादित कर सकें। ओके, एक एक मनुष्य को अपने जीवन काल में बहुत सारे रोल्स प्ले करने होते हैं, तो अगर आपको इन सारे रोल में खड़ा उतरना है, तो जो मेरा जो आप लोगों को एक सुझाव है, एक तो पॉजिटिव थॉट्स, जो ईर्ष्या और अहंकार जैसी चीजें, इससे दूर रहना है, और अपने विल पावर को स्ट्रांग रखना है। जैसे मैडम ने बताया, एज ए डॉक्टर की जो इस तरह के डिजीजेज होते हैं, क्योंकि मैं बायोलॉजिकल, मैडम ने बताया, मैंने लाइब्रेरी साइंस किया है, मैंने मास्टर्स बायोलॉजिकल साइंसेज में किया है, MMSc इन बॉटनी, तो मैं लाइफ साइंसेज की चीजों को भी देखता हूँ कि इस तरह की जो डिजीजेज होती हैं, जो उनमें बहुत विल पावर की जरूरत होती है। क्योंकि अभी मेरे एक नोन थे, उनको भी कैंसर था और वो नहीं रहे, बट मैंने उनको देखा था, वो सुप्रीम कोर्ट में लॉयर थे दिल्ली में, उनको लंग कैंसर था, बट वो 5 साल उनके चेहरे पे मैंने कभी देखा नहीं कि वो बीमारी का जो उनको है, तो इसी वजह से वो सरवाइव कर पाए। तो इस ऐसे डिजीजों में विल पावर का होना बहुत जरूरी है। तो विल पावर कब आएगी, जब आपके थॉट पॉजिटिव होंगे, आपके जो अगल बगल जो वाइब्रेशन हैं वो पॉजिटिव होंगी। तो ये मेरा एक कहना है आप सारे श्रोतागण से। इसी के साथ मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं यहाँ आया हूँ, मुझे बहुत खुशी है, धन्यवाद, ओम शांति।
थैंक यू तपेश सिन्हा जी, आपने हमें DRDO की कार्यप्रणाली के बारे में भी बताया कि कैसे वो देश की सुरक्षा के लिए, हमारी फिजिकल सुरक्षा के लिए नए नए साधन बना रहे हैं, टेक्निक्स को इम्प्रूव कर रहे हैं, और लेकिन मानसिक सुरक्षा के लिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है, और उसके लिए पॉजिटिव थॉट्स, और जो हमारे दुश्मन हैं ईर्ष्या अहंकार, इनसे हमें मुक्त रहना है। तो ये बहुत सुंदर मैसेज भी आपने साथ में दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन सब चीजों से दूर रहने के लिए और पॉजिटिविटी को अपने अंदर डेवलप करने के लिए हमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, वो है अपने मन को जानना। और आप किसी को भी तभी जान सकते हैं जब आप उसे बेहतर सुनेंगे, और किसी को भी सुनने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है साइलेंस। तो आज अभी आपको मेडिटेशन में ले जाएंगे हमारे बीके ईशु बहन। उस साइलेंस में आप अपने मन को सुने, आपका मन आपसे क्या कह रहा है, और मन को फिर आप कैसे दिशा निर्देश दें ताकि आपका मन पॉजिटिविटी और एलिवेटेड थॉट्स के ऊपर ही काम करेगा। ईशु बेन दिल्ली ORC से हैं, ओम शांति रिट्रीट सेंटर, जैसे आप यहाँ ज्ञान सरोवर कैंपस में आए हैं, हमारे नॉर्दर्न इंडिया का ये बहुत बड़ा रिट्रीट सेंटर है जो कि 30 acres में बना हुआ है। आप वहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं सरेंडर रूप से। आप 1990 से इस राज योगा का प्रैक्टिस कर रहे हैं और ओम शांति रिट्रीट सेंटर में होने वाले ऐसे सभी इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने में आप भी मददगार हैं और एक फैकल्टी के रूप में आप अपनी सेवाएं देते हैं। आप अनेक प्रोग्राम्स जो वहां पर होते हैं उनमें डिफरेंट कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में आपका मेन रोल रहता है और साथ ही साथ ब्रह्मा कुमारीज की जो इंटरनल ऑडिट्स होती हैं उसमें भी आप एक ऑडिटर के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं। तो मैं यशुबेन से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अभी आप सबको साइलेंस में ले जाएं और आप अपने मन की आवाज को सुने और फिर आप डिसाइड करें कि इस कैंपस में आपको क्या छोड़ के जाना है और क्या लेके जाना है सो दैट आप अपनी पूरी लाइफ में अपनी वेलबींग को मेंटेन रखें और आपका माइंड जो है सदा हील रहे। शांति,
ओम शांति, ओम शांति। हमने आदरणीय सूरज भाई जी से बहुत अच्छी गहरी बातें सुनी और बार बार एक चीज निकल कर जो सभी स्पीकर्स ने यहाँ पे बोली, हीलिंग। आप हीलिंग वर्ड होता है HEALING, हीलिंग। तो हीलिंग को जब सुनते हैं तो वो क्या है? एक गुड फीलिंग है। तो हीलिंग प्रोसेस पॉजिटिव है जो मेडिटेशन से आता है और जब वो मेडिटेशन से आता है तो व्यक्ति अंदर से सुकून महसूस करता है जिसको शब्द दिया जाता है, आज मैं बहुत संतुष्ट हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरी फीलिंग्स बहुत अच्छी हैं। तो दादी जी थे तो बहुत सुंदर एक बात कहते थे कि अगर आपको मेडिटेशन सीखना है और अगर आप मेडिटेशन सीखना चाहते हैं या आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस को करते हैं तो आप मतलब राजा हैं। राज योग ब्रह्मा कुमारी इसका बहुत अच्छा मेडिटेशन का प्रोसेस है और उसको कहते हैं राज। तो जो राजा बनने वाला होगा वही राजयोग की प्रैक्टिस को सीखेगा। तो अभी हम उस राजा बनने की प्रैक्टिस, मतलब मन का राजा है ना, क्योंकि माइंड की बात चल रही है, विल पावर की बात चल रही है, डॉक्टर्स अपनी बात कर रहे हैं, स्पिरिचुअल डॉक्टर्स अपनी बात कर रहे हैं, तो किस तरह से हम अपने मन को यहाँ पर स्टेबल करें और यहाँ से मेडिटेशन को सीख के जाएं। कहते हैं मेडिटेशन एक आर्ट है, ए अवेयरनेस, आर रियलाइजेशन। तो अवेयरनेस सूरज भाई जी ने बताई, उसका रियलाइजेशन हमें डॉक्टर्स ने बताया कि जब बीमारी होती है, कैंसर होता है, तो भी वो व्यक्ति काम कर रहा होता है क्योंकि उसके अंदर विल पावर होती है। और मेडिटेशन से जब गुड हीलिंग होती है, फीलिंग अच्छी महसूस करते हैं, तो लास्ट होता है ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन मेरे अंदर आए, मैं चेंज को अपने अंदर एक्सेप्ट करूं, उसके लिए है मेडिटेशन। तो सभी सीधे होके बैठेंगे और बहुत सुंदर थॉट्स एकता बहन ने आप सबको अंदर ही मन ही मन में रिवाइज भी कराए, उसको हम अपने अंदर रिवाइज भी करेंगे। सभी सीधे होके बैठेंगे, अपनी बैक को स्ट्रेट कर लेंगे, अपनी आंखों को खोल के रखेंगे, सामने बहुत सुंदर परमात्मा का एक एनर्जी का फोटो लगा है, उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे अपने आप को, महसूस करें। मेरी विल पावर पहले भी स्ट्रांग थी और अब भी स्ट्रांग हो रही है। मेरा अंतर मन मेरे शुद्ध विचारों से, शुद्ध संकल्पों से शक्तिशाली बन रहा है। मैं राजा, अपने मन की राजा हूं। मेरी इंद्रियां, मेरे कर्म, मेरे संकल्प, सब मेरे कंट्रोल में है और मैं राजा स्व पर राज्य करने वाली शक्तिशाली प्योर बीइंग हूं. आई एम लाइट. आई एम पावरफुल. आई एम हैप्पी बीइंग. आई एम नॉलेजफुल. इन शुद्ध विचारों से मेरा पूरा शरीर हील हो रहा है और हीलिंग धीरे धीरे शुद्ध फीलिंग को, श्रेष्ठ फीलिंग को सुख दे रही है और धीरे धीरे मेरी स्थिरता, मेरे शरीर की स्थिरता मेरे मन को भी शांत कर रही है और ये शांति आज मेरे अंदर की विल पावर को और मजबूत कर रही है. मैं उस परमात्मा की छत्र छाया में अपने आप को सेफ प्रोटेक्ट महसूस कर रहा हूँ. मैं शांत हूं. मैं शुद्ध विचारों से भरा हूं और मैं अपने समय का सदुपयोग कर रहा हूं. शुक्रिया परमात्मा. इतनी सुंदर अंदर की यात्रा जो आपने मुझे यहां पर दोबारा से अवेयर में लेकर आए, ये रियलाइजेशन मैं शक्तिशाली आत्मा, पवित्र आत्मा, शुद्ध आत्मा, ये रियलाइजेशन मुझे ट्रांसफॉर्मेशन की ओर लेकर जा रहा है. मैं रिलैक्स्ड हूं. मेरा मन बिल्कुल मेरे कंट्रोल में. मेरी बुद्धि सही निर्णय लेने के डायरेक्शन में है. ओम शांति. ओम शांति. अपने हाथों को बहुत स्लोली रब करें और अपने चेहरे पे लगा लें. और जब चेहरे पे लगाएं तो से टू योर सेल्फ आई एम पीसफुल. लगाएं अपने चेहरे पे एंड से टू योर सेल्फ आई एम पीसफुल. आई एम हैप्पी बीइंग. और एक साथ अपने साथियों को देखें एंड से टू देम आप बहुत शांत हैं एंड उनको थैंक यू कर दें. ओम शांति. ओम शांति.
भी बहुत बहुत थैंक्स करते हैं, हमारे मन को इतने शुद्ध विचारों से उन्होंने भरपूर किया, एक डीप साइलेंस को हमने एक्सपीरियंस किया, और इन्हीं शुद्ध विचारों को हम अपने साथ सदा के लिए अंदर में संभालें और उन्हीं से सदा भरपूर रहें। तो पुनः पुनः यीशु बहन का थैंक्स है, और मैं अनुरोध करूंगी वीके सिस्टर से हमारे सम्मानीय अतिथियों को गॉडली गिफ्ट देंगे और प्रसाद, गॉडली गिफ्ट और स्मृति चिन्ह देंगे।